ये देखिएगा, विद्वेश, ये 19 पृष्ठ है और विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय नंबर 10, यहां पर क्या लिखा है, यह सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। जैसा कि आपने हिंदी, केवल हिंदी में पढ़ा था, यह संस्कृत सहित है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा ही स्मरण होता है। उत्तर की ओर से ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवण उत्पन्न हुआ। ओम अकार आदि क्रम से अर्थात अकार नकार उकार मकार से सी आदि से और इसी पंच अक्षर पांच भेद से मात्र का आकार लरंकार लरकार पर्यंत हुए। ऐसे शिरो मंत्र चार मुख से त्रिपाद गायत्री हुई। अब इसमें यहां संस्कृत और देखते हैं, अभी हमने यह है एक ही भूत ओम एक ही भूत पुनः तथ द्वो ओम इतो ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें कित भी नहीं है, वाचक अहम और वाच्य मंत्रो अयम मम आत्मक, ये मेरी आत्मा है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा नहीं, इसका अनुवाद है ये, जैसे ये 15 है तो हमने, और ये 16 है, ये 17 है, ये 16 में ये वाच्य है, मैं वाच्य हूं, फिर 17 है उत्तर की ओर मुख से ऐसे ऐसे, फिर ये 18 है। तो इसमें यहां से शुरू होता है ये 17 19वां नादो मध्य मुखो, ये सारा लिखा कि आकार उत्तरोमुख और मकार पश्चिम और बिंदु ये, और ये सारा इसका, और इसका इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। इस प्रकार ये एक ही भूत होकर ओम अक्षर हो गया। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन्होंने ये ओम नमः शिवाय जो है, ये 21वां है, ये देखना ये इसका अर्थ है कि यह है, ये पांच अक्षर का जो बोधक है सारा इकट्ठा होकर के ये लक्षित है, अकार आदि ये सारा मिलकर के ये एक ही मंत्र बन गया ओम। इसका अनुवाद इन्होंने, ये 21 है यहां लिखा, इस 21 का अनुवाद यहां किया है, ये 20 है। इस ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ। अकार आदि कर्म से अर्थात अकार नकार उकार से मकार करा से सिर यह प्रगट हुआ, वह नाथ प्रगट। तो इसमें कहीं भी नहीं है कि ये यहीं से शुरू कर लेते हैं, जैसे यहां से शुरू हुआ था तो ये सारा 14 ये 16 ये 17, 18, 19 इनका अनुवाद यहां किया है इन्होंने, ऊपर से शुरू हो गए यहां से, ये 15 का यहां से शुरू हुआ 16 मैसेज। तो यहां हिंदी में कहीं भी इस अनुवादक ने, क्योंकि इसने सीधे संस्कृत से किया है तो ये गड़बड़ नहीं कर सकता था, और उसने केवल हिंदी ठोक दी। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, और यही अनुवाद उसने किया। उसने जो ओम नमः शिवाय है वो अपनी तरफ से घुसेड़ दिया। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं, इस मंत्र, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके श्रवण से मेरा श्रवण होता है। उत्तर की ओर से मुख से अकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ, यह एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष वेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है, इस मंत्र से व्याप्त है कि शिव शिव शक्ति का बोधक है। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। अब पुण्यात्माओं, ये बीमारी जो गलत मंत्रों की हमारे अंदर डाल रखी है, ये भक्ति में, ये जीवन को, इस मनुष्य जीवन को खत्म करने का कीड़ा है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना हमारे जीवन मानव जीवन का शत्रु है, हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और इस कीड़े का नाश करने के लिए कि ये मंत्र ठीक नहीं है जो आप जी जाप करते हो, उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे इस दास को। इन अज्ञानियों ने ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित को अभी आपसे दिखाया था, इन्होंने कैसा बट्ठा बैठा दिया देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण, केवल हिंदी है इसमें, इसके प्रारंभ में लिखा है केवल हिंदी, ये लिखा सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। इस केवल हिंदी में इन्होंने जो लिख दिया हमने वो फाइनल मान लिया 26 पृष्ठ पर। अब संस्कृत हमें बता रही है ये है वो, मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगल महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा और स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार मंत्र ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, ए ऊ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी एवं से एकु एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत था, वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्गूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इससे पंच अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश में आया है। यो ठोक दिया इसने, वह स्पष्ट कर रहा है कि ओम नमः से ओम अकार मकार उकार और बिंदु और नाद ये 5 हैं बस, इसने ठोक दिया ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है, यू तो नहीं होगा 5 अक्षरों से एक हो गया, अरे यू नहीं होगा, यू 5 अक्षर मंत्र है, यू ओम नमः शिवाय ये भक्ति का मंत्र नहीं है। इति सिद्ध। अब हमने एक कंसेप्ट और क्लियर करना है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। अब शिव पुराण केवल हिंदी वाले ने और संस्कृत वाले ने मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन, ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनमें तक गुण है और वो काल ब्रह्म इनसे न्यारा है। और अब ये शिव पुराण, ये देवी पुराण ये सिद्ध करेगी संस्कृत सहित जो है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत अर्थात देवी पुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंध में अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंध प्रारंभ होता है। यह है भाषा टीका सही तृतीय स्कंध अध्याय पांच, अध्याय पांच का मंत्र नंबर आठ। केवल हिंदी पढ़ें फिर संस्कृत पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं, आप सदा हम पर दया युक्त हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ये प्रदान नहीं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? ये अर्थ है इसका, संस्कृत बताएगी क्लियर है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतगुण क्यों युक्त क्यों किया, युक्त किए? अब देखना ये सातवां, यहां पर ये सातवां समाप्त हुआ था, आठवां मंत्र यहां प्रारंभ हुआ हिंदी का। इसकी संस्कृत यहां देखिए, ये सातवां समाप्त हुआ आठवां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित चय, किस प्रकार मैं बना दिया, विहित मैंने उत्पन्न कर दिया, तमोगुण है मैं तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को तूने रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, सोवित किमो तमो सतोगुण हरि विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। पुणात्मा अब श्रीमद भगवत गीता जी को आप आसानी से समझ सकोगे, अन्यथा ये पवित्र सदग्रंथ हमारे लिए पाढ़ हो रहे थे। और जो भी इन अज्ञानियों ने हमें हमारे को बता दिया, हमने वही स्वीकार कर लिया था, और वो अज्ञान हमारे अंदर इतना डिपॉजिट हो रहा है, इसको खुरचने के लिए इतनी मेहनत इस दास ने करनी पड़ रही है। और जब तक ये नहीं खुरचा जाएगा, इतना आप समझ नहीं सकते भगवान की वाणी को, जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे, पूरा जन समुदाय चाहे लाखों में लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे, उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोकविता कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी वो हमने सत मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे फिर हमें सदग्रंथों की नहीं परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए पूर्व के जो पेंट आप पर हो रहा है उसको, उस पेंट को, उस रंग को खुरचने के लिए ये सदग्रंथ रेगमार का काम कर रहे हैं और फिर ओरिजिनल पेंट परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर चढ़ा दी जाएगी, फिर आप गदगद हो जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 12, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि इस काल को 100,000 मानुष शरीरधारी मनुष्य खाने का, जीव खाने का श्राप लग गया है, इसी कारण से तीनों देवता इसके लिए व्यवस्था करते हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन भी तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ब्रह्म तक भी नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। 14 में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी के द्वारा फैला गया जाल बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, तर जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं ब्रह्म की साधना से। 15 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15 में, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से इन तीनों गुणों की पूजा से और किसी की पूजा करना ना सुनते हैं, ना ज्ञान सुनते हैं, इन्हीं तक सीमित हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि माया के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इससे अतिरिक्त किसी की साधना पूजा नहीं करते, उनके बारे में क्या कहते हैं, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने राक्षस, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले मूड लोग मुझको नहीं भजते। इसे क्षेत्र है कि तीनों गुण भी भजन के हैं, इनको भजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। उनको क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, 1-2 दो गाली दी और तीसरी चौथी यहां देखो, दूषित कर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले, मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि हे धर्मदास, हे महात्मा जी, आप गीता जी का नित पाठ करते हो और आप श्री विष्णु और शंकर जी की पूजा करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, और गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी का की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुलुम किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, प्रह्लाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा कि अरणा कुछ छाती तुड़वाई, अरण्यक सिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक, एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि अभी परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी कोनी, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की इसको। ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, अरण्यक सिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक अरण्यक सिपु वो जुलम किया और राक्षस कहलाया, फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था उसने के जुलम किए, ऐसी साधना की तुम सात जन्म नहीं कर सकते धर्मदास, उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यो का तो फिर जीवित कर दिया, फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुलम किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहां बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इसे बुंडा कर्म और के करेगा यो, राक्षस स्वभाव को धारण किया वह मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है, ये 4 रावण के अंदर लागू होती है जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी औगड़ नागा, ये सारे शिवजी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिवजी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की, और जब पार्वती जी को देखा उसके मन में दोष आ गया। उसने के सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या मांगता, क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो दशमागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा, निकाल कर तुरंत दे दिया कि ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी, केले शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अंधेरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। अर्यु तो एक बार तेरे सिर पर न्यू कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूक देता था, ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये एक बार न्यू कर तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे दोटियां का पीछे दोटे बाज जा रहे, ऐसे दौड़े जा रहे और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं ये कथा हम पहले ही पढ़ लिया करते, शिवपुराण में लिख रखी है। और यह मन मनाया करते हमें नविनाशी कवें अजर अमर कवें, अरे भगवान स्पीड खेच रहा डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे, अविनाशी होता कहे ताजा भाई करे कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जो वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों करेगी अड़े पार्वती, वो बोली मैं आपके लिए आई हूं, और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, वो तो वापस आवा कोनी शंकर, तो शंकर जी तो हमें कोना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आ जा आप यहां बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आज मैं सिखाऊंगी, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर, जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना भस्म कड़ा, कह ली और कर और कर, जब सिरपा लिया ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है, उसका भाज्य जो था नौकति सफीड थे, आगे पहुंचे कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा, अकाजा भागले विष्णु भाजा भाजा मर गया अस्त है, अब क्या हो गया, भाग ले बस पीछे आजा, भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया, उसका ना जच्चा भगवान शंकर का क्यों कैसे मार दिया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देख यू कड़ा तेरा यू ले रखे मना हाथ में देखते ले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच कहा सचमुच कहा है वो मरा हुआ, वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अग चाल दिखाऊ देख यू मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं यो वो उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब एक समय अब तीसरा गुण रह गया विष्णु, तमोगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लग गया, और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहालेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं सभी साधु संत, जिनको हम साधु संत कहते हैं, गिरी पुरी सन्यासी कनपाड़े नागा वैष्णो, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहां चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहां जाकर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करण का समय आया, वह पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णो साधु आ गए, सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णो साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे अरे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ नहाना न धोना, टट्टी के हाथ बिना धोते शेड फिरो, बार मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़े उठे थी, फेर लिया मुंह उल्टा हो गए, न बोले आजा तुम न हम नुहावेंगे, और मुक्को मुक्का लठम लठा तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कतलेआम कर डाला, कतलेआम 25,000 कटका मर गए, और गंगा के अंदर सौ सौ ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा तेग लावे हैं, काटे शीश नहीं जल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कटके मर गए, कतलेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साधको आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना हुए जाएगा जो इनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आ गए, वह नरक में भेज देते हैं। अब धर्मदास सुन रहा है, सच्चाई से परिचित भी हो रहा है, लेकिन ये पुराना रंग ये जल्दी सी उतरता कोई ना, एकदम सौ पर सुई गई, सारी बात सुन भी ली, घीसा भी गल्ला था, लेकिन यो मन एकदम मानता कोई ना, कहने लगा, उसको अपने मन में विचार किया कि ये मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की तोहीन करता है, इनकी बेइज्जती करता है। मन में विचार करके कहने लगा ए जिंदा, अपनी जुबान बंद कर ले, मैं एक शब्द भी भगवान विष्णु और शिव के बारे में नहीं सुनना चाहता। खबरदार जागे बोला है थे। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए आगे बैठे बैठे, अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना जैसे कोई था एक हो जा। और सुबह सुबह की बात, सूर्य उदय हो रहा, अपने आत्मा आपके सामने को आदमी बात करता हो और आपके आगे से एकदम हट जा, कर्जा बैठ जा आदमी का, और बुद्धिमान व्यक्ति न सोचेगा भाई कोई भगवान था या कोई फरिश्ता था, भाई इतना बढ़िया ज्ञान देवा था, हाय हाय सारी सच्ची बात कहता और मेरे इस दुष्ट मन ने एक नहीं मानी। अब सारा दिन वो भयभीत सा रहा और भाई मैं जो साधना कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। परमात्मा ने एक और भी कई वार्ता हुई थी, जैसे धर्मदास ने ये सोचकर कहा था कि ये मुसलमान है और मांस खाते हैं ये, तो धर्मदास कहता था हम कोई जीव इंसानी करते किसी की तरह है, हम जीव जंतु ना मारते, पाप लग गए किसी की हत्या करना, इस तरह की बातें कही थी। तो परमात्मा अचानक अदृश्य हो गए तो उसका ये हो गया कि ये साधना जो कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। और मन में जो कहे सोचा है भगवान वो संत फिर आ जा, इब कह कति वाद विवाद नहीं करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, हे परमात्मा एक बार फिर भेज दिए उस संत ने, हे मेरे भगवान मतलब सारी रात ना नींद आई, करवट ले ले काटी ना वह भक्ति करी, अब सुबह उठा ना उस तालाब में आया, क्योंकि परमात्मा से वार्ता होगी थी कि भी जैसे तू इस तालाब में आवा है अरे लोटे में पानी ले रखा था, इस लोटे के पानी में देख धर्मदास कितने जल जीव जंतु हैं, अरे ये तू स्नान करा ना इस जोड़ में जोड़ के पानी में, अरे तने ऐसे ऐसे मलमल कर तू ना आया, तने कितने जीव मार दिए गिनती नहीं हो सकती, तू चाह इस जोड़ में ना के तीर्थ में ना के पुण्य करना, तेरे तो पाप की गिठड़ी बांध ली तूने तो, और जो तूने ये लीपा पोथी करी जहां तू पूजा पाठ करने को तैयार हुआ, कहता मैं जीव इंसान नहीं करता, तो यहां कितने जीव मार दिए गिनती नहीं हो सकती, कितने पाप तने कर लिए, 70 ब्राह्मण की है हत्या जो लीप के चौका तुम देव नेता, इसमें 70 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की हत्या का तुम्हारे वेदों पुराणों में लिखा कि इतना फलानी चीज दान कर दो, इतना मंत्र जाप कर ले, जब वह ब्रह्म हत्या करते हैं कहते तने 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी एक दिन, और पृथ्वी ऊपर पगजो धार है करोड़ जीव एक दिन में मारे, ऐसी कुछ वार्ता करके गीता जी का ज्ञान उसको कति स्पष्ट करके अंतर्ध्यान हो गए थे भगवान। अब सुबह ना तो जोड़ में नाण ने दिल कराया उस तीर्थ में, ना वह पूजा करने दिल कराया जो शालिग्राम बांध्या हट रहा था गिठड़ी ठाए फिर था, उसने सोचा तो रोटी बना ले भगत तो उठ गए और यहां से निकल ले चलूंगा कितने, लकड़ी ला रखी थी तोड़ के सामने, कई दिन का प्रोग्राम बना रखा था डटने का, उसने रुकने का ठहरने का, तो उसने सुबह उठकर एक मोटी लकड़ी चूल्हे में लाई और सहयोगी लकड़ी लगाकर अग्नि जला दी और रोटी सब्जी बनान लग गया। सूर्य उदय होने से कुछ पहले अंधेरे से में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हुई थी, रोटी भात इतने सब्जी बनाई, रोटी तैयार करी, इतने वो लकड़ी जलती रही, जो मोटी लकड़ी थी वह बीच में होलो थी थोथी थी और उसमें चीटियां थी बिना गिनती की चीटी, वो अंधेरे में दिखी कोना, और वो लकड़ी 3-4 फुट की थी वह सारी जलगी, बाद में रह रही थी 8-9 इंच की, वह जलती जलती जब निकट आई तब तक सूर्य उदय हो चुका था। अब क्या था कि कुछ सीली सी गिल्ली सी लकड़ी थी, घनी गिल्ली भी नहीं थी, तो उससे क्या था जलने से उसके पिछले एंड पे बाहर की साइड में एक तरल पदार्थ उबल जाता है लकड़ी का, आगे से जल रही है, पीछे से तरल पदार्थ उसके चारों तरफ उबलता है, ऐसा निकलता है उसमें से। धर्मदास क्या देख रहे हैं कि चींटियां उस लकड़ी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही हैं सुराख से, और उस बाहर जो तरल पदार्थ उसके ऊपर जल सा उबल रहा था उसमें गिर गिर के चटक चटक जल रही है। आगे को जाती है तो अग्नि फूक रही है। अब धर्मदास, क्योंकि साधु भगत जो है वो दयालु होते हैं, उनमें दया बहुत होती है, एकदम हाथ खड़ा का खड़ा रह गया, रोटी बना ली जितनी बना ली, उसी समय लोटा पानी का उस लकड़ियों पर डाला, बुझा दी और बैठ कर माथे पादर कर बैठ गया, भगवान तो जुलम हो गया, इतने जीव मार दिए मन इस पापी ने, इतनी भोजन में इतनी हिंसा होगी, आज मैं आहार नहीं करूंगा। डिसीजन ले लिया कि आज मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इसे किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप ना लगेगा। इस उद्देश्य से उसने वह सारा भोजन एक थाली में रखा, ऊपर कपड़ा स्वच्छ डाला और संत की तलाश में चल पड़ा। हम साधु संत किसने माने हैं ज्यादातर, जिसने लाल कपड़े पहन रखे हो या कति और दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी हो, या कपड़े ना हो तन पर लंगोट हो, दाढ़ी मूछ जरूर बढ़ रही हो और ऊपर का शीश पर जटा हो, या कति मूड मुड़ा रखा हो, गोटम गोट हो रहा हो, ऐसी कोई विशेष साधु जिसने बाहर यह आडंबर कर रखा हो, हम उसने संत मानते हैं, मानते थे, इब तो नहीं माने। आगे क्या देखा कि परमेश्वर कबीर जी कहते, सो थल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, एक हिंदू संत का रूप बना के, अन्य रूप बना के एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, एक जल का लोटा उनके पास रखा था। धर्मदास जी ने देखा कि सामने महापुरुष बैठे हैं, जाके प्रणाम किया, भोजन रख दिया और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ, आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, ठीक है धर्मदास, रख दे, भूख लगी है भाई, रोटी खाऊंगा। अब जब धर्मदास नाम कहा तो ध्यान से देखा कि ये तेरा नाम कैसे जानता है संत, फिर आप अंदाजा ला लिया कि मैं बहुत भंडारे धर्मयज्ञ करता हूं, भंडारे करता हूं, साधु संतों को बुलाता हूं, उनमें से कोई एक होगा। अब परमात्मा ने क्या किया कि जो लोटा पानी का लिया हुआ था जल, अपने लोटे में से जल हाथ पर रखा और ऐसे कोई मंत्र सा बोल के सारी रोटी राटियां पर सब्जी पर छिड़क दिया जो थाली में रखी थी। पानी छिड़कते ही क्या हुआ, जल छिड़कते ही क्या हुआ कि पूरी जो सब्जी रोटी थी उन सब की चींटियां बन गई और मुख में अंडे ले रखे अपने, पूरी काली थाली होगी। जब परमात्मा उसी रूप में आ गए, जिंदा वाले महात्मा का स्वरूप बना लिया, जिस स्वरूप में पहले दिन चर्चा हुई थी, वार्ता हुई थी, और कहा कि ए वैष्णो साधु, ए महाराज जी, आपने वो कह रहे थे कल हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते, तेरे तक कसाई भी अच्छा, इसी पाप का भोजन मने खवाने आया था, ले जा तेरे ठाके भोजन को। अब सामने देखे तो वे परमात्मा चरण पकड़ दिए, रोए रोए, नो कहे भगवान माफ कर दे मुझ पापी ने, हे परमात्मा मेरे से गलती बन गई, सारी रात आपको पुकार रहा था, सारी रात आपकी मैंने चाह थी, हे परमात्मा मुझ पापी पर दया करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ, आपकी सारी साची बात लगे थी पर मेरा मन पापी मानना नहीं था क्योंकि पुराना रंगना चढ़ गया था, अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। फिर परमात्मा कबीर जी ने उसका सारा सृष्टि रचना सुनाई, फिर सतलोक दिखाया, बेटा मैं भगवान हूं, ये भोली आत्मा नहीं समझती, नहीं पहचान पा रही। जब ऊपर जाकर देखा कि हे सचमुच परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो, धर्मदास जी ने पूछा, परमात्मा फिर तो ये सारे वेद और कतेब झूठी हैं, ये सब विष्णु जी को भगवान बताते हैं, निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते हैं वेद कतेव झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं वो समझे नहीं। ये वेद और कतेव जितनी भी हैं, कुरान पुराण ये कतेव के हैं और चारों वेद कहते झूठे नहीं है, झूठे हुए हैं जो नजर समझ नहीं पाए। इन चारों वेदों में मेरा वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस प्रकार उस परमेश्वर ने उस अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाया जो आज हमारे काम आया। बोलो सतगुरुदेव। तो इसके बाद फिर क्या होता कि अगले दिन धर्मदास जी ने एक और प्रश्न कर दिया कि हे परमात्मा, क्या विष्णु जी में और शंकर जी में कोई शक्ति, विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? मैंने सुना है जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चरवा के भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था, तो क्या भगवान विष्णु जी में शक्ति नहीं है? परमात्मा ने कहा धर्मदास, जैसे तामर ध्वज लड़के को श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा के जीवित कर दिया था, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। वो जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था, इकलौता पुत्र था सुभद्रा का, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए, पांचों पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण जी ने जीवित नहीं कर क्यों नहीं किया, नहीं कर सका। धर्मदास जी ने पूछा भगवान कारण क्या है? कारण ये है भाई, मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारे मेख। ये भगवान कर्म में प्रारब्ध में कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। उस तामर ध्वज लड़के की आयु शेष थी तो श्री कृष्ण जी में इतनी शक्ति है, इनमें इस कटे हुए शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु की आयु नहीं थी, उसका प्रारब्ध वही मृत्यु था, श्री कृष्ण जी व्यवस्थे उसको जीवित नहीं कर सके। और भी कई बातें ऐसी कही, क्योंकि ये मन जल्दी से टिकता नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। एक बहन मुझे मिली, वैसे तो कई भक्तों ने ऐसे ही बताया, एक बहन मुझे मिली, हमने इसमें जयपुर में एक सत्संग किया था, उससे पहले सीडी चलवा दी थी अपने ज्ञान की, हम ये बताने आ रहे हैं। तो उससे कुछ दिन पहले उस लड़की ने, उस बहन ने एक मंदिर में हमारी इस दास द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में, वो किसी मंदिर में रखी देख ली। कोई पुजारी दिल्ली से संबंधित था, शर्मा था, और एक शर्मा प्रेस पे हम हमारे भगत इस पुस्तक को छपवाया करते थे, वो वहां से उठा ले गया फ्री में एक दो, वो मंदिर में धर रहा था, और वो मंदिर की पुजारिन थी, जाया करती पूजा करने। तो कहती मैंने वो पुस्तक उठा के देखी थोड़ी देर पर डी बैठ के, और उसमें लिख रखा था कबीर भगवान है सृष्टि रचना में। बोली मैंने उल्टी रख दी उसी समय, कि यो संत भी सा बोला है कबीर ने भगवान बताओ, तो कवि था एक। कहती कुछ दिनों के बाद मेरा भाग्य उदय हुआ कि वहां एक चैनल है भास्कर टीवी जयपुर में, उस पर मैंने ऑन किया तो आपका सत्संग आ रहा था, और वही देखा कि तो वही संत है और उसे वही ज्ञान दे रहा है। तो मैंने काफी ध्यान से सुना और वो प्रमाण आंखों देखे, पुस्तक मेरे पास थी गीत, ये गीता की प्रेस गोरखपुर से, और सारी तुलना कर ली, मिला ली, और न्यो पता लग गया हम गलत कर रहे हैं, फिर भी तो मोह ना हट्या हमारा, फिर भी नो दिल ना करे, सामने देख रहे ये कति भक्तिकरण के को ना, और फिर भी ना हट्या गया। फिर हमारा सत्संग का वहां पोस्टर लग गए, वो सत्संग सुन आई, फिर सत्संग सुना उस लड़की ने, फिर सारी कथा बताई बेबे ने, उसका पति भी साथ था, पति ने तनाव लिया नहीं, उसने अवश्य ले लिया। तो पुण्यात्माओं, ये मन ईसा निकम्मा है, उस गलत ज्ञान ने तो कति सारे ने घोट रहा था, स्वीकार कर रहा था, अरे सच्चे ज्ञान को आंखों देख कर भी ना मानता। तो इस प्रकार उस धर्मदास का या एक और समस्या थी। फिर उसने कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसा है वैसा है, अटमट फेर मारन लग गया, इतनी दुनिया बावड़ी थोड़ी है, सब भगवान विष्णु को शिव जी को भक्ति करन लग रही कर रही है। परमात्मा ने सोचा तो निरा नालायक से भाई, अकेले भाई ठीक है, कर ले तो अपने भगवान ही भक्ति, वो फिर अंतर जान हो गए, फिर एड्रेस हुए उनका, फिर कलेजा फट गया। ये रोवा बुरी तरह, न्यू कहे मैं किसा निकम्मा हूं, मैंने अपने भगवान को अपने हाथों से खो दिया, हे परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दे। तावा रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवू सुनो विधाता। फिर न्यू कहे परमात्मा दर्शन दे दे, नहीं तो मैं आत्मघात करूंगा, अब मेरे से जिया नहीं जाता। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, हमारे साथ मेरे साथ वो बन गई जैसे गरीब आदमी की खेती, किसान ने मुश्किल से खेती तैयार की हुई, कोई लूट ले जाए उसने, फिर सारा साल भूखा मरना दिखाई देता है। अब वहां मथुरा से वापस ओलिया बांध होगा 800 किलोमीटर लगभग दूर है, ना बरसाने गया ना वृंदावन गया, फिर वहां जाते थे वृंदावन से फिर बरसाना जरूर जाया करें जो मथुरा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? राधा जी से सिफारस लुवाने, वहां फिर लोग राधे राधे श्याम मिला दे, राधे वरना राधे ना श्याम उड़े, मारी आदत छड़ले ड्रोन की। अब वह राधे मुश्किल से मिल जाया करती, रो पीट के बिचारी कदे उस कृष्ण जी थे, उस पर सिफारस लुवा कृष्ण से मिला दे। और कृष्ण जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये आपके समक्ष है। तो वो ना वृंदावन गया ना उड़ा राधे वाले गांव में गया, वापस आ गया, वापस रोता हुआ बुरी तरह रो रहा है और अपने गर्भ में घुस गया। उसकी पत्नी आमनी नाम था उसकी पत्नी का। आमनी देवी ने देखा कि भगत जी तो एक महीने लगभग 2 महीने का टूर प्रोग्राम बना गया था, अरे तो 10 से 15 दिन में वापस आ गया। उसने पूछना चाहा कि भगत जी क्या बात होगी, सेठ जी क्यों रो रहे हो? अब वो रो जिस तरह बालक की मां मर जाया करे, छोटे से के माँ बाप दोनों मर जा, इतनी बुरी तरह डकड़ा डकड़ा कर रो रहा, पड़े अपने फरस पे। अब आमनी देवी ने आइडिया लाया कि मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूं और भगत जी दान धर्म किया करता था, तो यू खुले हाथ के थे। आमनी देवी टोका टाकी कर देती थी कि दान तो हिसाब का होया करे सेठ जी, गणा नाग दान करया करो। तो इसने सोची कि कहीं रस्ते में सेठ जी के पैसे चोरी हो गए और ई भी ये वापस धन के अभाव से आ गया, और रो इसलिए रहा है कि मैं यू मन नू कहेगा पैसे दे दे, मैं और पैसे लेकर जाऊंगा यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, तो ये सोच रहा होगा कि या मेरी गेल लड़ेगी नाक मारेगी। तो उसने कहा अपनी सोच से सोच के कहती है, सेठ जी लगता है आपका धन किसी ने चुरा लिया, क्या आपका धन चोरी हो गया, दिखे रास्ते का खर्चा नहीं रहा, आपके कोई धन की कमी है, आप कितना धन ले जियो और अपना काम पूरा करके आओ, रो ना। अगुआ भी आंखें आंसू आ गई उसके, इतना बुरी तरह रोया था। तो धर्मदास ने सोचा यह गलत समझ गई, रोता रोता अपने को रोक कर कहता कि आमनी देवी यदि मेरा ये धन लौट जाता तो मुझे कोई दुख नहीं था, तेरे से और प्रार्थना कर लेता, ले जाता धन तो मैं अपना कर्म करके आता, आज मेरा वो धन लुट गया शायद मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, और वो धन नहीं मिला तो मैं जीऊं को ना, अब मैं जी नहीं सकता, मैं महापुरुष ने फिर सारी घटना जो परमात्मा के साथ बीती थी वह सारी बता दी, सृष्टि रचना सारी सुना दी अपनी पत्नी तय। अब वो उसकी पत्नी आमनी कहती है कि तू व्यापारी बिजनेसमैन सेठ हो गए और सौदा चूक गया, ऐसी गलती कैसे कर दी। तो धर्मदास कहता है कि आमनी अपनी जिंदगी में पहली बार में आरमान रहा हूं अपनी, मैं आज तक सौदा चूकिया नहीं था या मेरे पर गलती भार पड़ेगी इसलिए रो रहा हूं। आमनी देवी ने कहा कि राम कृष्ण और शंकर भगवान के बारे में भी हमने किसी साधु संत से सुनकर ही उनके चरणों में उनमें भक्ति लग रही थी, तो उनसे अपनी कौन सा रिश्तेदारी है, हमने भगवान चाहिए, लाला जी तो लोभ कराया करे सच्चा, तो आज लाला जी भी ना रहा हका कति नहीं रहा, तभी तो मैं रो रहा हूं अपने कर्मा ने। अब पुण्यात्माओं रोजाना प्रतिदिन धर्मदास सुबह उठ जा और दूर तक जंगल में देखने जाता है कहीं भगवान मिल जावे, दूर तक जाता 6 महीने हो गए ना रोटी खावे डंगते ना नावे धोवे, ऐसे बैठ जाओ जैसे भीलनी बैठी रहा करती भगवान श्री राम की इंतजार में, बाहर चौतरियों पर बाहर बैठ के गेट के सामने अरियों देखता रहता, कोई दिखता नहीं वो भाग्या जाता नंगे पैरों, वो भगवान कोई और भी संत दिख जाता कि 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर दूरी पे तो वहां भाग्या जाता, जाते देखता अकना वो तो कोई नहीं, फिर रोता हुआ वापस आता। अपने आत्माओं जिसका लाग गए वो ये जाने, और जब तक यह इतनी नहीं लागेगी हमारे आत्मा में इतने हमारा कच्चा काम से। और वो क्या करता था, जहां भी पता लगता कि वहां कोई संत आया हुआ है पनी में बाहर जंगल में बैठा है वो वहां पहुंच जाता, वहां बैठ के उन्हें पता था वेश तो वो दूसरा भी बना लेते हैं, बैठ कर चर्चा करता अगजी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर भी कोई शक्ति है, तो साधु के संत कहता अगर तू तो पागल हो रहा है इस तो ऊपर कोई शक्ति है, उठ कर चल पड़ता कि ना कच्चा माल भर रहा है, भी वहां नहीं बैठता था। फिर किसी दूसरा संत का पता लगता वहां भी ये चर्चा करता है, वो भी फिर ऐसे ही बोलता उठ के आ जाता कि ना ठिकाने बात आई नहीं। अब 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली, सूख का कांटा हो गया। आमनी ने सोचा यू जीव कोई ना मरेगा, और आमनी उसको बहुत संतोष सहारा दिया करती जी चिंता ना करें, अगर वो संत है तो जरूर संभालेंगे तने अवश्य आएंगे आपके पास, हिम्मत ना हारें।